कोरोना दिनभर 2 अप्रैल बृहस्पतिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। पिछले कुछ दिनों में भारत का कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ा। एक वजह है तबलीगी जमात।
अब तक 400 पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनकी की एपिडेमियोलॉजिकल लिंकेज इस क्लस्टर से पाई जा चुकी है। एडिशनल टेस्टिंग भी चल रही है।
मीडिया ने जब तबलीगी जमात के मुखिया मोहम्मद साद को लापता बताया तो उन्होंने जारी किया मैसेज।
बंदा आज खुद भी दिल्ली में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए है। जहां जहां भी हमारी जमातें हैं, हुकूमत के कवानीन की पाबंदी जरूर करें।
जानिएगा कि गर्मी का क्या होगा कोरोना पर असर, साथ ही रूपा झा से सुनिए लॉकडाउन का पोस्ट कार्ड। ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं हमारी खास प्रस्तुति कोरोना दिनभर। सबसे पहले आप सब श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और आभार कि आपको कोरोना पर हमारी ये प्रस्तुति पसंद आ रही है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं कि फेसबुक पर आप हमें सोमवार से शुक्रवार तक यानी कि हफ्ते के 5 दिन 7:30 बजे से सुन सकते हैं, लेकिन अफसोस ये रेडियो पर उपलब्ध नहीं है। कार्यक्रम के अंत में आज एक बार फिर से कोशिश होगी आपकी टिप्पणियों को शामिल करने की और आपके पूछे गए सवाल को जवाब देने की। तो सबसे पहले दुनिया की बड़ी खबरें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आशंका जताई है कि दुनिया में कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले 10 लाख तक पहुंच सकते हैं और मौतों का आंकड़ा 50,000 को पार कर सकता है। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से 12 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में कोरोना के 328 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह से कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1965 पहुंच गई है। अब तक 151 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि अमेरिका में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जरूरी मेडिकल उपकरण और दवाएं अब लगभग खत्म हो गई हैं। अमेरिका के लगभग सभी प्रांतों के गवर्नरों ने सुरक्षा उपकरण, टेस्टिंग किट्स और ज्यादा वेंटिलेटर्स देने की अपील की है। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने सरकारी अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि अमरीका में ऐसे हालात बन चुके हैं जिसमें उपलब्ध सुरक्षा उपकरणों, टेस्टिंग किट्स और वेंटिलेटर्स के लिए ट्रंप प्रशासन और राज्यों व शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है और इन चीजों के लिए अभूतपूर्व मांग के चलते ये मुनाफाखोरी भी शुरू हो गई है। इस बीच अमेरिका में 6 महीने के एक बच्चे की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई। माना जा रहा है कि ये बच्चा कोरोना वायरस से मरने वाला सबसे कम उम्र का शिकार है। अमेरिका में अब तक कोरोना से 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की वजह से स्पेन में मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यहां पिछले 24 घंटों में कोरोना से 950 लोगों की मौत हुई है। स्पेन में अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। कोरोना से मौतों के मामले में स्पेन इटली के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रभावित देश है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज दूसरी बार राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। अपने पिछले संबोधन में उन्होंने पूरे देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए 1 सप्ताह के नॉन वर्किंग वीक का ऐलान किया था। आज अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 771 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,500 से ज्यादा हो गई। पुतिन ने पिछले महीने मास्को में एक अस्पताल में डॉक्टर से मुलाकात की थी जो कि पॉजिटिव निकला, पर पुतिन ठीक हैं और अपने घर से काम कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में चीन अपने विस्तृत सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। वो तकनीक के माध्यम से न केवल लोगों पर लगातार नजर रख रहा है बल्कि इसके जरिए वो कोरोना वायरस को फैलने से भी रोक रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बड़ी गिरावट आई है। जहां 5 हफ्ते पहले रोजाना संक्रमण के 1,000 मामले आते थे, वहीं अब नए मामले लगभग ना के बराबर हैं। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक 2 संभावित कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर टेस्ट शुरू कर चुके हैं। WHO के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक अमरीकी कंपनी के बनाए वैक्सीन का जानवरों पर सफल परीक्षण किया जा चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार कोरोना के चलते विंबलडन हुआ रद्द। ग्लासगो में होने वाला जलवायु सम्मेलन भी टला। ये थी कोरोना से जुड़ी दुनिया भर की बड़ी खबरें। और अब बात भारत की। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, भारत में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। तबलीगी जमात से जुड़े 400 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और तबलीगी जमात में शामिल होने वाले 2804 लोग क्वारंटीन में हैं। यानी भारत में जितने पॉजिटिव मामले सामने आए हैं उसमें लगभग 20% मामले इस तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का भी कहना है कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह तबलीगी जमात है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज कहा,
इस क्लस्टर से जुड़े हुए मामलों से का हमें पता लगा था तेलंगाना के थ्रू, और उसके बाद जब यहाँ के लोग डिफरेंट स्टेट्स में गए, जैसे कि अंडमान निकोबार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, असम और उत्तर प्रदेश, तो वहाँ से जब केसेस की और डिटेल आई तो उसके तहत हम लोगों ने इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सैम्पलिंग का प्रोसेस शुरू किया। अब तक इन राज्यों से करीब 400 पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई हो चुके हैं जिनकी की एपिडेमियोलॉजिकल लिंकेज इस क्लस्टर से पाई जा चुकी है, और इसके साथ ही एडिशनल टेस्टिंग भी चल रही है जिससे हमें लगता है कि शायद और कुछ पॉजिटिव केसेस इस क्लस्टर से लिंक पाए जा सकते हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल को आप सुन रहे थे। राज्य सरकारें अभी भी उन लोगों को खोज रही हैं जो या तो जमात में शामिल हुए या उनमें शामिल लोगों के संपर्क में आए। सवालों के घेरे में तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद कांधालवी हैं। दिल्ली पुलिस मौलाना साद के खिलाफ FIR दर्ज कर चुकी है। मीडिया ने जब मौलाना साद को लापता बताना शुरू किया तो उन्होंने मंगलवार रात एक ऑडियो मैसेज जारी किया और कहा कि वो इन दिनों खुद आइसोलेशन में हैं।
डॉक्टरों की हिदायत व इलाज का अहतमाम, हुकूमत व इंतजामिया का पूरा साथ देना, मसलन मजमा जमाना करना, और इन हालात में हुकूमत और इंतजामिया की पूरी मदद करना ज़रूरी है। बंदा अज खुद भी दिल्ली में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए है। जहाँ जहाँ भी हमारी जमातें हैं वो वहाँ रहते हुए हुकूमत के कवानीन की पाबंदी ज़रूर करें।
मोहम्मद साद की आवाज़ आपने सुनी। कल हमने आपको बताया था कि ये तबलीगी जमात क्या है और ये क्या करते हैं। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि मोहम्मद साद कौन है, तो क्यों ना एक बार फिर BBC संवाददाता जुबैर अहमद से ही पूछा जाए कि वो कौन है।
देखिए, मोहम्मद साद जो है वो तबलीगी जमात के अमीर हैं। अमीर का मतलब प्रमुख हुआ, और ये सिर्फ भारत के तबलीगी जमात के नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी तबलीगी जमात है उसके प्रमुख हैं। 55 साल के हैं। इनकी पैदाइश यहीं निज़ामुद्दीन बस्ती में हुई। उनका घर जहाँ इस वक्त है वहीं वो पैदा हुए, और उसी मरकज़ जिसको मरकज़ कहते हैं वहीं पर उनकी पढ़ाई भी, वहीं एक मदरसा वहाँ पर हुई। और कई सालों के बाद यानी 2014 में वो जाके इसके प्रमुख बने। इससे पहले जो इस संस्था की स्थापना की थी मोहम्मद इलियास, उनके ये परपोते हैं। तो इसका मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इनको जो ये प्रमुख जो हैं ये विरासत में इनको मिली है, और इसीलिए बहुत सारे लोग जो है, एक 3 साल पहले की बात है, बहुत मुखालफत की इनकी, क्योंकि ये बहुत बड़े इस्लाम के विद्वान नहीं माने जाते हैं। इनसे भी दिग्गज लोग मौजूद थे इस जमात में, और उन्होंने मुखालफत की, और 3 साल पहले एक जो धड़ा है वो अलग हो गया, और उनमें 80 और 82 साल के 2 बड़े विद्वान थे इस्लाम के। उन्होंने ये कहा कि ये अमीर इस तरह से नहीं होना चाहिए, हर हफ्ते एक अमीर होना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि बड़े ज़िद्दी इंसान हैं ये साद साहब जो हैं, और किसी की बात नहीं सुनते हैं। कुछ कहते हैं लीडरशिप की भी कमी है, कुछ कहते हैं बहुत साधारण और नेक इंसान हैं। तो ये मतभेद तो हुआ पार्टी के अंदर, जमात के अंदर, उसके बाद जो एक धड़ा है वो अलग हो गया। अब जो ये चीफ हैं या प्रमुख हैं वो 2 अलग अलग बातें आ रही हैं। एक कहते हैं कि वो 60% के चीफ रह गए हैं, कुछ कहते हैं 90% के चीफ रह गए हैं। आप अगर गूगल करेंगे तो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी, इनकी तस्वीरें नहीं मिलेंगी, इनके वीडियोस नहीं मिलेंगे आपको। क्योंकि इसलिए नहीं कि क्योंकि ये खुफिया एजेंसी हैं या खुफिया तौर से ये काम करते हैं, वो इसलिए क्योंकि इनका विश्वास है कि TV देखना, तस्वीरें खिंचवाना, फिल्में देखना, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो इनके घरों में आप जाएंगे तो TV नहीं मिलेगी आपको, TV सेट्स नहीं मिलेंगे, और वीडियोस नहीं मिलेंगे। तस्वीरें आप लेने लगेंगे तो मना कर देंगे, इनकी औरतें जो हैं वो, उनको सवाल ही नहीं, आप उनकी तस्वीरें ले सकते हैं। तो ये उस इस्लाम को मानते हैं जो बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म के अंदर ही इनको रूढ़िवादी कहते हैं, कि वो पुराने बिल्कुल जहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद जिस तरह की ज़िंदगी गुजारे थे उस ज़माने में, उस तरह की ज़िंदगी ये गुजारे, और जो मॉडर्न गैजेट्स वगैरह हैं इनसे इनको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं। कई लोगों के पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं है।
जुबैर अहमद बता रहे थे कि मोहम्मद साद कौन है और किस तरह से वो करते क्या हैं, उनका करियर क्या है। मैं देख रहा हूं कि मैं एक बार फिर से उन तमाम श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं जो फेसबुक पर इस समय हमें तुरंत जिन्होंने ज्वाइन किया है और सुन रहे हैं। आपको बता दें कि आप इस कार्यक्रम को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कोरोना दिन भर के इस अंक को सुन सकें। आजकल व्हाट्सएप पर इस तरह के मैसेजेस की भरमार है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना वायरस मर जाएगा क्योंकि यहाँ की गर्मी वो सह नहीं सकता। तो सवाल तो है, बीबीसी संवाददाता सर्वप्रिया माफ कीजिएगा सांगवान से सुनिए कि गर्मी का कोरोना वायरस पर कुछ असर होगा या नहीं।
कई जगह ये दावे किए जा रहे हैं कि गर्मी की मदद से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। कई लोग कह रहे हैं कि पानी को गर्म करके पीजिए, कई लोग कह रहे हैं कि गर्म पानी से नहाइए। सोशल मीडिया पर क्या क्या नहीं कहा जा रहा। अब जैसे इस एक पोस्ट को ही ले लीजिए जिसे कई देशों में हजारों लोगों ने शेयर किया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि गर्म पानी पीने और सूरज की रोशनी में रहने से इस वायरस को मारा जा सकता है। इस दावे में आइसक्रीम को ना खाने की सलाह भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, इस मैसेज के साथ फर्जी तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि ये तमाम बातें यूनिसेफ ने कही है। यूनिसेफ के लिए काम करने वाली चार्लेट गॉर्निज कहती हैं कि हाल ही में एक मैसेज यूनिसेफ के नाम से ऑनलाइन फैलाया जा रहा है कि आइसक्रीम और ठंडी चीजों से दूर रहने से इस वायरस से बचा जा सकता है। ये पूरी तरह से झूठा मैसेज है। तो गर्मी का वायरस पे क्या असर पड़ेगा ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है। कोरोना वायरस लिक्विड ड्रॉपलेट्स यानी छींकते हुए बाहर आने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है। अगर कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति छींकता है तो एक वक्त पर 3000 ड्रॉपलेट बाहर आते हैं। इन ड्रॉपलेट्स में करोड़ों कोरोना वायरस प्रोटीन कवरिंग में होते हैं। कोरोना वायरस शरीर से बाहर कितनी देर एक्टिव रहता है, अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ ने अपने रिसर्च में पाया है कि ये वायरस लिक्विड ड्रॉपलेट्स में 3-4 घंटे जिंदा रह सकता है। ये ड्रॉपलेट्स कुछ वक्त के लिए हवा में तैर सकते हैं। उसमें से कोई ड्रॉपलेट अगर लकड़ी पर पड़ा तो 24 घंटे से ज्यादा एक्टिव रह सकता है। अगर वो स्टेनलेस स्टील पर पड़ा तो 2-3 दिन। इसका मतलब है कि जिसको कोरोना वायरस संक्रमण हुआ है और उसने कुछ छुआ या छींका तो वही चीज आपने छू ली और आंख नाक मुंह के जरिए आपके शरीर में वायरस चला गया तो संक्रमण हो सकता है। ये ध्यान रहे कि सिर्फ छूने से नहीं बल्कि आपके शरीर में जाने से संक्रमण होगा। अब देखते हैं कि गर्मी से कितना प्रभाव पड़ेगा। कोरोना वायरस 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक नष्ट नहीं हो सकता। उतना तापमान ना भारत में है और ना किसी के शरीर के अंदर। कुछ वायरस तापमान बढ़ने के बाद नष्ट होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस पर क्या परिणाम होता है इसके बारे में ब्रिटिश डॉक्टर सारा जार्विस कहती हैं कि 2002 में सार्स महामारी नवंबर में शुरू हुई थी और जुलाई में खत्म हो गई थी। तापमान बदलने की वजह से रुकी ये अब भी बताना मुश्किल है। वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर परेश देशपांडे का कहना है कि अगर कोई भारी गर्मी में छींका तो कोरोना ड्रॉपलेट जल्दी सूख सकते हैं और कोरोना का संक्रमण कम हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। हम जानते हैं कि फ्लू वायरस गर्मी के दौरान शरीर के बाहर नहीं रह पाता, लेकिन हमें इस बारे में नहीं पता कि कोरोना वायरस पर गर्मी का क्या असर पड़ता है। तो गर्मी में कोरोना नष्ट होगा इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। तापमान के भरोसे मत बैठिए। कोरोना वायरस दुनिया भर में 100 से ज्यादा देशों में फैला है और उनमें जिनमें ग्रीनलैंड जैसे ठंडे देश भी शामिल हैं और दुबई जैसे गर्म शहर भी, मुंबई जैसे ह्यूमिड शहर भी और दिल्ली जैसे ड्राई शहर भी। एक बार अगर ये वायरस शरीर में घुस गया तो इसे मारने का तरीका अभी तक इजाद नहीं हुआ है। हमारे शरीर को इससे लड़ना होगा। हालांकि अगर हम अपनी बेडशीट को धोकर रखेंगे तो इस वायरस को वहां से जरूर हटा सकते हैं, लेकिन शरीर में घुस चुके वायरस को शरीर धोकर नहीं निकाला जा सकता।
तो सर्वप्रिया सांगवान बता रही थी कि गर्मी का कोरोना पर क्या असर पड़ेगा। और अब इससे पहले कि हम कार्यक्रम के अंत में पहुंचे, हमारी विशेष प्रस्तुति लॉकडाउन के पोस्टकार्ड्स। इस सीरीज में आज सुनिए बीबीसी संवाददाता विकास त्रिवेदी का लिखा पोस्टकार्ड रूपा झा से।
लॉकडाउन के पोस्टकार्ड्स। आज का ये पोस्टकार्ड विकास त्रिवेदी की कलम से। माफी, माफी उन सहूलियतों की जो आज अपराध लग रही हैं, वो सारी सुविधाएं जो जाने अनजाने में मिल गईं, प्रिविलेज्ड होने की माफी। माफी की जब लॉकडाउन हुआ तो अपने बस्तों को गांव लौटाने के लिए पैक नहीं करना पड़ा। कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतल पानी से नहीं भरनी पड़ी क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर पैदल नहीं चलकर जाना था। सड़क पर प्यासे चलते लोगों को देख अपने बिस्तर पर बैठकर पिए घूंट के लिए माफी। सड़क पर लाखों लोग हाथों में बच्चे, बूढ़ों और बस्तों को पकड़े चले जा रहे हैं। रास्ते में छिड़के जाते कीटनाशकों से अपनी आंखें बचाते, कमर से बच्चों को खिसकाते हाथों से भी माफी। जब तुम अपने हाथों से ये सब कर रहे थे, इधर अपनी आरामगाहों में हम दिन में 20 दफा सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ किए जा रहे थे। तुमको कीड़ा मकौड़ा समझा जाने की माफी, वो सैनिटाइजर तुमको नसीब नहीं होने की माफी, तुमसे छिने और खुद को मिले ऐसे अधिकारों के लिए माफी। माफी उस घर की बच्ची से जिसका एक सदस्य दिल्ली से पैदल मुरैना पहुंचते पहुंचते मर चुका था। दिल्ली से मेरे लिए क्या लाए, उस बच्ची के पूछे सवाल को न मिले जवाब के लिए माफी। कितने ही लोग उस वक्त दिल्ली में थे जब वो आदमी शायद दिल्ली से पैदल निकल रहा होगा। प्यारी बच्ची, हम कुछ भी नहीं भिजवा सके, तुम्हारे उस दिल्ली वाले चाचा मामा की चलती सांसें भी नहीं, तुम्हारी घर में रखी गुलाबी गुड़िया से भी माफी, बसों ट्रकों पर एक दूसरे से चिपक कर घरों को लौटते लोगों माफ करना। तुम जब एक दूजे के पसीनों में मिले हुए घर लौट रहे थे, इधर सोशल डिस्टेंसिंग पर ट्वीट किए जा रहे थे, अपने कमरों में अकेले बैठ तुम सबकी हकीकतों से अनजान, सोशल होकर भी अनसोशल होने की तुम सबसे माफी, अपने गांव में पहुंच चुके लोगों से भी माफी, अपने जैसों की हर उस हरकत के लिए जब तुम्हें दिल्ली में रिक्शा चलाते, रेड़ी लगाते, मेट्रो के एस्केलेटर्स पर चढ़ने से घबराते हुए देखकर बड़ी हिकारत से बिहारी या पुरबिया भैया कहा था। अब जब तुम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों को मौत समझकर अपने गांव की तरफ लौट चुके हो, तो इन सूने हो चुके शहरों से बहुत जोर से चिल्लाकर हाथ जोड़कर माफी। माफ करना साथियों कि हम सब एक हैं, फिर भी हम कितने अलग हैं, हमारे दुख कितने अलग हैं। अपने सुखों तुम्हारे दुखों के लिए माफी, माफी उन खास अधिकारों के लिए भी जिन्हें इस माफी को मांगने के बावजूद भी छोड़ा नहीं जाएगा। माफी की आवाज तुम तक पहुंचे तो माफ करना, अपने संग हुई नाइंसाफी का ये इंसाफ करना, हो सके तो माफ करना,
हो सके तो माफ करना। ये पोस्टकार्ड था विकास त्रिवेदी का। और अब आपके सवालों की बारी। कल चंपालाल ब्रजलाल बाड़मेर राजस्थान से इन्होंने हमसे पूछा कि मेरा सवाल यह है कि क्या मोबाइल से कोरोना वायरस फैल सकता है। तो जवाब यह है कि माना जाता है कि कोरोना का संक्रमण छींकने या खांसने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है, लेकिन जानकारों का ये कहना है कि यह वायरस किसी भी सतह पर अस्तित्व में रह सकता है और वो भी संभवतः कई दिनों तक। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आपका फोन, चाहे वो घर पर हो या दफ्तर में, पूरी तरह से बार बार साफ हो और सभी प्रमुख फोन बनाने वाली कंपनियां मोबाइल फोन को अल्कोहल से, हैंड सैनिटाइजर से या वाइप से साफ करने के लिए आगाह करती हैं, क्योंकि इससे फोन की कोटिंग का नुकसान होने का खतरा रहता है। और अगर ये लेयर को नुकसान होता है तो कीटाणुओं के लिए मोबाइल फोन में फंसे रहना आसान हो जाता है। लेकिन आजकल जो फोन आते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि उनको खतरा कम है। अगर ऐसा है तो आप सैनिटाइजर से इसे साफ कर सकते हैं। कुछ देर पहले सावन सिंह मांडलोई ने हमसे सवाल पूछा फेसबुक पर कि क्या गर्मी से इसका प्रभाव कम होगा। आज इसी कार्यक्रम में सरप्रिया सांगवान ने जो जानकारी आपको दी, मेरे ख्याल से ये आपके लिए पर्याप्त है। इसके अलावा संतोष कुमार लिख रहे हैं कि वस्तु स्थिति को सही ढंग से रखने के लिए सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक हुसैन ने लिखा है कि आपकी आवाज़ सुनकर बीबीसी उर्दू के वकार अहमद की आवाज़ याद आ रही है और उनका ज़बरदस्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिनको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के बाद आपके लिए फेसबुक पर एक और कार्यक्रम आने वाला है, दुनिया जहान, जिसमें कि आज हम आपको ये बताएंगे कि दक्षिण कोरिया ने किस तरह से कोरोना के संक्रमण को रोका। तो इस कोरोना दिनभर के बाद फिर से आप सुनिएगा इस कार्यक्रम को। फिलहाल आज इस कार्यक्रम को यहीं पर देना होगा विराम। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर कोरोना दिनभर का ये सिलसिला आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही। अब मोहनलाल शर्मा को अनुमति दीजिए। हाँ, फिर मुलाकात होगी कल 7:30 बजे। नमस्कार।